लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि इस वर्ष पुर्तगाल के लिस्बन शहर में मनाया जा रहा विश्व युवा सम्मेलन युवाओं को सुसमाचारी मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने तथा विश्व में सुसमाचार के साक्षी बनने में मदद प्रदान करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने डिजिटल मंचों पर सूचना सत्य निष्ठा की वृद्धि के लिए तैयार की गई एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि देशों को ऑनलाइन मंचों पर नफरत और झूठ के फैलाव से उत्पन्न गंभीर वैश्विक नुकसान से निपटने की जरूरत है। स्वयं जनित कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI के त्वरित विकास से उत्पन्न संभावित जोखिम के बारे में खतरे की घंटी से डिजिटल प्रौद्योगिकों द्वारा पहले ही पहुंचाई गई क्षति को कम करके नहीं आंका जा सकता। इन प्रौद्योगिकियों ने ऑनलाइन मंचों पर नफरत फैलाने के साथ साथ दुष्सूचना और दुष्प्रचार फैलाए हैं। इस नीति पत्र में तर्क दिया गया है कि डिजिटल मंच प्रयोक्ताओं द्वारा साझा की जाने वाली सूचना की शुद्धता, निरंतरता और विश्वसनीयता बरकरार रखने में महत्वपूर्ण कारक साबित होने चाहिए। UN प्रमुख ने इस रिपोर्ट की प्रस्तावना में लिखा है, मेरी आशा है कि ये नीति पत्र सूचना सत्य निष्ठा को मजबूत करने में दिशा निर्देशक कार्यवाही की खातिर एक स्वर्णिम मानक उपलब्ध कराएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने हाल ही में डिजिटल मंचों पर इन्फॉर्मेशन इंटेग्रिटी यानी सूचना सत्य निष्ठा पर केंद्रित अपनी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट में आगाह किया है कि देशों को ऑनलाइन मंचों पर नफरत और झूठ के फैलाव से उत्पन्न गंभीर खतरों से निपटने की जरूरत है। महासचिव ने सुरक्षा परिषद की बैठक में मानव विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI की संभावनाओं और क्षमताओं को रेखांकित किया, मगर साथ ही इस क्रांतिकारी नवीन प्रौद्योगिकी के बुरे इरादों के साथ प्रयोग के विरुद्ध आगाह भी किया है। UN प्रमुख ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अगर साइबर हमले करने, गहरा झूठ या दुसूचना और हेट स्पीच फैलाने का एक मुख्य हथियार बन गई, तो वैश्विक शांति व सुरक्षा के लिए इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा, ज्यादा दूर नहीं, बस सोशल मीडिया को ही देख लें, जो उपकरण और मंच इंसानों के दरमियान संपर्क बनाने और बढ़ाने के लिए इजाद किए गए थे, वो अब चुनावों में धांधली करने, कपोल कल्पनाओं पर आधारित दावे फैलाने और नफरत व हिंसा को भड़काने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। UN हिंदी न्यूज के प्रमुख महबूब खान ने इसी संदर्भ में UN महासचिव के टेक्नोलॉजी दूत अमनदीप सिंह गिल के साथ खास बातचीत की।
आप ये बताएं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, इस समय और आने वाले वक्त में
जी,
वो प्रोग्रेस के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए और जो प्रोस्पेरिटी है पूरी दुनिया की, उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है?
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसेंटली इसमें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। बहरहाल पिछले 20 साल से ये सारा फील्ड बड़ी तेजी से डेवलप कर रहा है और इस फील्ड की फाउंडेशन है डेटा। जैसे ही डेटा ज़्यादा क्वांटिटी में मिलना शुरू हुआ है इंटरनेट के कारण, तो उसके ऊपर AI के मॉडल्स के साथ डेटा से इनसाइट्स निकालना, उसे जानकारी निकालना, उसे पैटर्न निकालना, वो आसान हो गया है। तो अब रिसेंटली क्या हुआ है कि ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिनको हम कहते हैं, उनसे जो इसकी कैपेबिलिटी है AI की, बहुत बढ़ गई है। ऐसे लगता है कि जैसे आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं और वो आपको सलाह मशवरा दे रहा है। तो इसके फायदे बहुत हैं, पर नुकसान भी हैं, क्योंकि इसको इंसान की तरह, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान की तरह नहीं समझ सकते, तो उसको भले बुरे का पता नहीं है और सच झूठ का भी पता नहीं है।
तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से बहुत खतरनाक भी है, ये कितना बड़ा खतरा आपकी नजर में है?
देखिए, जैसे हम यूनाइटेड नेशंस में जो क्लाइमेट चेंज है या हेल्थ रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत जरूरी है कि सही तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाए, लोग उसको ध्यान से देखें सुने। तो अगर उसको आप मैनिपुलेट कर देंगे, और ये तीसरी बात है, दिस इज डेलिब्रेट, जिसको कहते हैं डिसइंफॉर्मेशन। एक तो गलत जानकारी, मिस इन्फॉर्मेशन, आपको पता नहीं था, आगे हो गया। लेकिन अगर जानबूझ के दुष्प्रचार जिसको कहते हैं आप कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि उसे असल में जानों को खतरा है। अगर आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे, किसी ने आपको जानबूझ के गलत जानकारी दी, तो आपकी जान को खतरा है। क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर गलत जानकारी आगे बढ़ेगी, तो हम सही उपाय नहीं कर पाएंगे उसके लिए। और जो आपने लोकतंत्र की बात की, आजकल जो है, जो पुराने मीडिया के साधन हैं, वो कम इस्तेमाल हो रहे हैं। लोग अखबार कम पढ़ते हैं, रेडियो कम सुनते हैं, तो उनको जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, युवा हैं खास करके, उनको जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो स्मॉल बाइट साइज में आ रही है। तो उसमें सच क्या है, झूठ क्या है, कौन उसके पीछे है? अगर आप किसी अखबार को पढ़ते थे, उसमें देखते थे जर्नलिस्ट की बायलाइन है, उसकी एक रेपुटेशन होती थी, आपको पता है आप एडिटर से बात कर सकते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी थी। अब वो ये AI के कारण, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के कारण, वो ट्रांसपेरेंसी कम हो गई है, लेयर्स बन गई हैं, तो आपको पता नहीं लगता कि कहाँ मैं जाऊं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई गलत जानकारी दी गई है या किसी तरह से आपका नुकसान हुआ है, तो आप किससे जाके शिकायत करें? और अकाउंटेबिलिटी का भी इशू है इसमें,
खासतौर से जो ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो क्या ये कंपनियां इस चीज को समझती हैं, इसके खतरे को? और अगर समझती हैं, तो ये कहाँ है स्थिति, ये जो खतरा है या चिंता है उसको एड्रेस करने के लिए?
स्थिति अच्छी नहीं है, ये मैं जरूर कहूंगा कि अवेयरनेस बढ़ी है और रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ी है, पर अभी भी हम जिस तरह की स्थिति होनी चाहिए उससे बहुत दूर है। आपको मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। पहली तो ये जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, जो इनकी मार्केट्स हैं, जैसे हिंदुस्तान में कह लीजिए, कुछ साल पहले तक सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म था हिंदुस्तान में, जो कंप्लेंट्स हैं उनको हैंडल करने के लिए एक स्टाफ था। मतलब उससे मीनिंगफुल क्या फॉलो अप कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम्स हैं कुछ? तो एक तो स्टाफिंग की कमी है, कॉन्टेंट जो उस एरिया से, जिस लैंग्वेज में कॉन्टेंट आ रहा है, अगर जैसे बर्मीज भाषा में आ रहा है या बंगाली में आ रहा है, उसको समझने वाला स्टाफ नहीं है। तो अगर उस पर गलत कंटेंट फैल रहा है, एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट, वायलेंट कंटेंट प्रोपेगेट कर रहा है, तो उसको समझने वाला भी कुछ चाहिए और स्टाफ चाहिए जो उसको एड्रेस करे। तो इन प्लेटफॉर्म्स ने इन चीजों में बहुत कम इन्वेस्ट किया। अब ठीक है, थोड़ा बढ़ रहा है, बट फिर उसका ऊपर नीचे होता रहता है। अभी भी देखिए, रिसेंटली ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम्स काफी प्लेटफॉर्म्स की, उनको कम स्लैश किया गया, तो वो तो गलत बात है, उसको चेंज होना चाहिए। दूसरा ये है कि इसमें जो अकाउंटेबिलिटी, जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है, कि अगर कोई चीज गड़बड़ हो जाती है तो उसको कैसे फटाफट उसको ठीक कैसे किया जाए, वो अभी इतना मजबूत नहीं है। मैंने तो आपको 2-3 उदाहरण दिए हैं। तो सेक्रेटरी जनरल इस बात से बहुत चिंतित है, वो चाहते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं अपनी जिम्मेवारी समझें और इसमें इन्वेस्ट करें इन चीजों में, और कोड्स ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। जो उन्होंने इस हफ्ते में रिलीज किया, एक पॉलिसी ब्रीफ लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने ये इंटेग्रिटी ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन की बात की है, कि जिस पे दुनिया, जो पब्लिक रिलाई करती है जिस इन्फॉर्मेशन में, कैसे हम उसको समझें कि ये ठीक है या गलत है, ये मैनिपुलेट हुआ है, तो उसमें कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए। ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को उसको फॉलो करना चाहिए।
आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर UN हिंदी न्यूज के प्रमुख महबूब खान के साथ, UN महासचिव के टेक्नोलॉजी दूत अमनदीप सिंह गिल के साथ खास बातचीत सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
कृपा
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। विश्व के पांचों महाद्वीपों में विभिन्न कल्याणकारी सेवाओं के माध्यम से उपस्थित यूखरिस्ट में येसु के शिष्य नामक धर्म संघ की धर्म बहनों ने धर्म संघ की शताब्दी के उपलक्ष्य में रोम की तीर्थ यात्रा कर शुक्रवार को संत पापा फ्रांसिस का साक्षात्कार कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। धर्म बहनों का अभिवादन करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में शिक्षा, चिकित्सा तथा अन्य उदारतापूर्ण कार्यों के लिए धर्म संघ की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने याद किया कि यूखरिस्ट में येसु के शिष्य नामक धर्म संघ की स्थापना का लक्ष्य गरीब लोगों के विनीत सेवक बनना, उनके प्रयासों को साझा करने में सहायक होना और उनकी मानवीय एवं धार्मिक मुक्ति को बढ़ावा देने में भविष्यवक्ता बनना था। उन्होंने कहा कि उनके जीवन के केंद्र में यूखरिस्ट था, जो कि प्रेम का संस्कार, एकता का संकेत, दान का बंधन है, जैसा कि द्वितीय वैटिकन महासभा हमें सिखाती है। संत पापा ने कहा, प्रेम, एकता और दान, आराधना और सेवा, यानी मनुष्य और समाज में पाप से उत्पन्न घावों और रिक्तियों को कोमल से भरना, येसु के सामने घुटने टेकना और लंबे समय तक वहां रहना, यही आपकी जीवनचर्या है जिसकी मैं सराहना करता हूं, क्योंकि आपके जीवन के द्वारा आप अन्यों को मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि आपके धर्म संघ की साहसी महिलाओं की प्रार्थनाओं ने वास्तव में विश्व के सभी महाद्वीपों में एक सकारात्मक शक्ति उत्पन्न की है, जो अपने अपने क्षेत्रों में सभी अपेक्षाओं से कहीं अधिक भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मुक्ति के कार्यों को शुरू करने और बढ़ावा देने के लिए प्रेरित हुए हैं। उक्त धर्म संघ ने अपने कार्यों द्वारा परिवारों और पल्ली समुदायों के विश्वास और उनकी प्रतिबद्धता को फिर से जागृत किया है। विभिन्न स्तरों पर स्कूलों की स्थापना कर उन्होंने कई लोगों, पुरुषों और महिलाओं, युवकों, वयस्कों और बुजुर्गों में भक्ति और अपनी गरिमा की भावना को फिर से जागृत किया है। संत पापा ने कहा कि इस धर्म संघ ने एक अलग युद्ध छेड़ दिया है, गरीबी और अन्याय के खिलाफ युद्ध। उन्होंने एक अलग तरह की महामारी फैलाई है, प्रेम की महामारी। लातिनी अमरीकी देश सांतियागो की राजधानी चिले स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में अर्थशास्त्रियों और अन्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर जीवन संबंधी परम धर्म पीठीय परिषद के अध्यक्ष, वैटिकन के वरिष्ठ महाधर्माध्यक्ष विंचेंसो पालिया ने भोजन की बर्बादी को बेहद शर्म की बात निरूपित किया है। उन्होंने भ्रातृत्वपूर्ण मानव परिवार के रूप में भूख के खिलाफ ठोस कार्रवाई लागू करने हेतु अर्थ बाजार के तर्कों के परे जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। खाद्य और पोषण सुरक्षा के संदर्भ में भोजन के नुकसान और बर्बादी को रोकना एक अंतर क्षेत्रीय चुनौती विषय पर महाधर्माध्यक्ष पालिया ने अपना संबोधन केंद्रित रखा। यह कार्यक्रम महाधर्मादेश पालिया की लातिनी अमरीकी, विशेष रूप से चीले और अर्जेंटीना की यात्रा का हिस्सा है, जो 23 अगस्त से 31 अगस्त तक जारी रहेगा। संत पापा फ्रांसिस के शब्दों का स्मरण दिलाते हुए महाधर्माध्यक्ष पालिया ने कहा कि भोजन की बर्बादी का अर्थ है लोगों की बर्बादी। उन्होंने कहा, भोजन की नहीं बल्कि लोगों की बर्बादी है, जो असहनीय, निंदनीय और बेहद शर्म की बात है, जिसके लिए हम ईश्वर और इतिहास के समक्ष जिम्मेदार होंगे। लातिनी अमरीका में व्याप्त खाद्य स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जहां खाद्य अपशिष्ट में वैश्विक अपशिष्ट का केवल 6% शामिल है, महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि हालांकि यह स्पष्ट रूप से एक सकारात्मक आंकड़ा है, तथापि क्षुधा पीड़ितों के बारे में यदि हम सोचना बंद कर दें तो यह दुखद तथ्य होगा। ऐसा उन्होंने लातिनी अमरीका के 4,70,00,000 अल्प पोषित लोगों को ध्यान में रखकर कहा। उदाहरणार्थ हेटी जैसे देश में, जहां कई लोगों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। महाधर्माध्यक्ष पालिया ने भोजन की बर्बादी से लेकर मानव जीवन की बर्बादी तक समस्या को देखने के तरीके में बदलाव का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा, हम अब भोजन के मुद्दे को पूरी तरह से आर्थिक और बाजार की तर्कणा की दृष्टि से देखने का जोखिम नहीं उठा सकते। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि खाद्य उत्पादन और वितरण के आधार पर आर्थिक संरचना को अंतिम लक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि लोगों की सेवा तथा एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के साधन के रूप में माना जाना चाहिए। भारत के कैथलिक धर्माध्यक्षों ने चंद्रमा पर भारत के चंद्र मिशन की सराहना की है तथा इसे भारतीय वैज्ञानिकों की एक महान उपलब्धि निरूपित किया है। लगभग 7,07,00,000 की लागत वाला चंद्रयान 3 23 अगस्त को जमे हुए जल क्षेत्र चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतर गया। प्रक्षेपण के एक महीने बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान की चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग के लिए भारत के कैथलिक धर्माध्यक्षों ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों की सराहना की है। भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने 23 अगस्त को जारी एक वक्तव्य में कहा, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिकों और तकनीशियनों द्वारा की गई प्रगति वास्तव में सराहनीय है और हमारे दिलों को गर्व से भर देती है। सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष एंड्रूस थाजत ने कहा कि परियोजना के पीछे इसरो और पूरी टीम के प्रयास संपूर्ण देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा, ज्ञान की खोज और अन्वेषण की कोई सीमा नहीं होती, यह जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाती है तथा भारत की विविधता में एकता को प्रतिबिंबित करती है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य मिजोरम की राजधानी आइजोल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सायरंग में बुधवार को एक रेल पुल के ध्वस्त हो जाने से कम 22 मजदूरों की मौत हो गई है तथा 4 लापता मजदूरों की मरने की आशंका जताई जा रही है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोर मथांगा द्वारा साझा किए गए वीडियो फुटेज में एक धातु का फ्रेम दिखाया गया है, जो ऊंचे स्तंभों से नीचे एक जंगली घाटी में गिर गया है। एक ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने लिखा, मैं इस त्रासदी से बहुत दुखी और प्रभावित हूं तथा बचाव कार्यों में मदद के लिए बड़ी संख्या में बाहर आए लोगों के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अनुसार घटनास्थल पर 40 मजदूर काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने कहा है कि बचाव अभियान जारी है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।